हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की ओर से। सतीश सीतामढ़, सीता देवी और सतीश का घर के अंदर आज सत्संग के लिए इन्होंने हमको आज सेवा का अवसर दिया, आप सबको भगवान की कथा सुनाने का। और आप सब यहां पधारे हैं, आपका स्वागत है। एक श्लोक भगवत गीता रखी हुई है। भगवत गीता का अर्थ है भगवान ने जो गीत गाया। दो शब्द है भगवत और गीता, इन दो शब्दों में लोग प्रायः गीता गीता कहते हैं, लेकिन गीता से भगवत शब्द ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। गीत का मतलब गीत कोई भी गाता है, लेकिन ये भगवान का गीत है। भगवत गीता भगवान का गीत है, इसलिए मुख्य है। तो ये भगवान का गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो भगवत गीता का ये सातवां अध्याय हमारे सामने है, मेरे ख्याल में सातवां अध्याय। हरे कृष्ण। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एक ये श्लोक निकला हुआ है अपने आप, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, सातवां अध्याय भगवद गीता का, सातवां अध्याय। भगवत ज्ञान, असल में भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्यायों में से आपके घर में कुछ आपके अब सोना चांदी रखते हैं, साबुन डब्बा होता है ना, डब्बा बॉक्स ज्वेलरी का उसका ऊपर ढकना होता है, एक नीचे ढकना होता है, और दोनों ढकनों के बीच में सोना रखते हैं। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय ऊपर का ढकना है, लास्ट के 6 अध्याय नीचे का ढकना है, अपर लिड और लोअर कंटेनर। लेकिन बीच के 6 अध्याय जो हैं वो इसमें असली जेम है, हीरा है। तो ये सातवां अध्याय, ये 6 अध्याय बीच में क्या है, व्हाट आर दी 6 चैप्टर, ये भक्ति के 6 अध्याय। भगवद गीता भक्ति का शास्त्र है, भागवत शास्त्र। तो ये सातवां अध्याय है, सातवें अध्याय का भी ये जो श्लोक है, ये आगे श्लोक से चलता आ रहा है। आगे का श्लोक है, यहां से कथा शुरू होती है। यहां से शुरू होती है। कामैश तेष्टिर्हृत ज्ञाना परपद्यन्ते अन्य देवताः। कामैश, कामैश का मतलब भोग की इच्छा। इस दुनिया में लोग कुछ सुख चाहते हैं, कुछ भोग चाहते हैं, तो उस भोग की इच्छा पूरी करने के लिए कहां जाते हैं? कामैश ते हृत ज्ञाना, उनका असली ज्ञान उनसे चुरा लिया जाता है। हृत ज्ञाना मतलब ज्ञान उनका कोई चुरा लेता है। कौन चुरा लेती है? माया चुरा लेती है। तो ज्ञान क्या है जो चुरा लेती है? वो इससे पहले का श्लोक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद बहुत सारे जन्मों के बाद, कई जन्म लग जाते हैं, जो ज्ञानवान होता है वो इस निर्णय के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर पहुंचता है, इस नतीजे के ऊपर पहुंचता है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री वासुदेव कृष्ण सर्वस्य है, सब कुछ है, इज एवरीथिंग। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसका अर्थ आप जो यहां बैठे हो और जो ये मानते हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इसका अर्थ है वासुदेव सर्वमिति। इसका मतलब बहुत जन्मों में मैं आपने ज्ञान अर्जित किया है तब आज इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हो। हाँ, यू हैव टेकन दिस डिसीजन, ये आपने अब निर्णय कर लिया है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन का लक्ष्य। इसका मतलब बहुत जन्मों का ज्ञान कटा हुआ है तब ये नतीजा निकला। दिस रिजल्ट इज आफ्टर मैनी मैनी बर्थ्स, बहुत जन्मों के ज्ञान के बाद ये डिसीजन लेना पड़ता है। माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का क्या अर्थ होता है? प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है पांव पकड़ना, परपना, प्रपद्यन्ते। ये पांव नीचे ऐसे होता है ना, ये नीचे तलवा, ऊपर पांव, और फिर ये ऐसे ऊपर पांव ऐसे ना, ये जगह, इसको बोलते हैं परपना, इसको पकड़ना, भगवान के जो पांव पकड़ता है, परपना। माम प्रपद्यन्ते, मेरे चरण पकड़ते हैं। समात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। तो बाकी दूसरे तो लोग कैसे हैं भाई? ऐसे महात्मा मुश्किल है, तो इसका मतलब लोग तो दुनिया में बहुत है ना, तो ऐसे महात्मा तो बहुत कम है। तो फिर दूसरे कैसे हैं? तो बोल भगवान कहते हैं दूसरे कामेश ते शर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो दूसरे देवताओं के चरण पकड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि वो कुछ भोग की इच्छा करते हैं। इसलिए बहुत किसी और देवताओं की, एक नहीं, देवताओं के चरण पकड़ते हैं। महात्मा मेरा चरण पकड़ता है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बहुत कम है, लेकिन बहुत से लाख ज्यादा कहां जाते हैं? अर्जुन पूछता है, तो ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है, तो दुनिया में तो दुनिया भरी हुई है, बाकी कौन है? तब भगवान कहते हैं कामेश ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनका सच्चा ज्ञान उनका गुम हो जाता है कि भगवान के चरणों में जाना चाहिए, वो किसी अन्य देवता के शरण में जाते हैं। तम नियमम आस्थाया प्रकृतिम नेता सोया, फिर उनका स्वभाव के अनुसार उस देवता के नियमों का पालन करते हैं, वो नियम से करते हैं पूजा, उस देवता के नियम की पालन करते हैं। फिर क्या होता है? उसको श्रद्धा कौन देता है? उस देवता के ऊपर कौन श्रद्धा देता है उसको? भगवान कहते हैं श्रद्धा मैं देता हूं। यो यो यम यो यो यम तनम भक्त श्रद्धयाम इच्छति तस्य श्रद्धायाम तस्य तथयाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस भी देवता की पूजा करना चाहता है, क्योंकि वो कुछ इच्छा पूरी करना चाहता है। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मंदिर में जितने लोग जाते हैं उनसे आप पूछो क्यों जाते हैं मंदिर में? कभी आप पूछना, आप भी तो मंदिर जाते हैं ना, आपसे ही मैं पूछता हूं क्यों जाते हैं मंदिर में आप? हाँ बोलो माता जी, कैसे क्यों जाते हैं मंदिर में? बोलिए मंदिर में हम क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए। पूजा में क्या बोलते हैं? हाँ, सुख शांति मांगते हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, भगवान का दर्शन करते हैं। और मंदिर में क्या करने जाते हैं? सब लोगों से ईमानदारी से पूछो। हाँ, भगवान हमारा मन की इच्छा पूरी करना, पहली मन की इच्छा पूरी करना। और भगवान पूछे मन की इच्छा क्या है, तो आप क्या कहोगे? तो इतना बड़ा लिस्ट निकालो, मेरी मन की इच्छा है घर मेरा जल्दी बन जाए, गाड़ी मेरी आ जाए, बेटा मेरा डॉक्टर बन इंजीनियर बन जाए, मन की इच्छा ये है और क्या है। हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, यही मन की इच्छा है ना, ये श्लोक वही कह रहा है। एक किसी की ये मन की इच्छा है कि मुझे ये भगवान मिल जाए, यशोदा की तरह मैं बैठ के कन्हैया को माखन खिलाऊं, ऐसी मन की इच्छा है किसी की? यशोदा जाने, कन्हैया जाने, माखन जाने, मेरा घर बनना चाहिए। कन्हैया अपने घर में खुश रहे। सच है कि झूठ है? मुझे भगवान मिल जाए, मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं, मुझे संसार भूल जाए, ऐसी कोई प्रार्थना करता है? तो यहां भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं मुझे तो चाहते नहीं है, चाहते हैं दुनिया को। तो दुनिया को चाहते हैं तो जो दुनिया को चलाने के लिए मैंने जिसको काम दिया उसके पास जाते हैं। अब समझ रहे, मुझे चाहेंगे तो मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरी दुनिया को चाहते हैं। प्रभु को भजे न कोई, भगवान को कोई भजे नहीं कह, प्रभुता को भजे सब। भगवान की जो ये दुनिया है इसका सब पुजारी है, भगवान कोई पुजारी नहीं, भगवान की दुनिया का पुजारी है। मुझे नहीं, आपको दुनिया चाहिए, भौतिक सुख संपत्ति चाहिए, तो जो भौतिक सुख संपत्ति के देवता है उनके पास आप जाओगे वैसे भी, लेकिन वहां जाने के लिए भी आपको श्रद्धा चाहिए ना उसके ऊपर। वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं देता हूं, तुम्हारी उस श्रद्धा को मैं पक्का करता हूं। क्यों भैया भगवान ऐसे आप मेरी श्रद्धा को उसके ऊपर क्यों पक्का करोगे? कम से कम तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारा धर्म के ऊपर विश्वास तो होगा, तो आगे चल के वो देवता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करके मेरे पास भेज दे। ऐसे बहुत से लोग भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं और भगवान शंकर देखता है कि इनको दुनिया नहीं चाहिए, भगवान को मांगने आए हैं, तो भगवान श्री भोलेनाथ उंगली पकड़ के उनको भगवान की राम की भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे लाखों महात्मा हमने देखे हैं जो भगवान शंकर के मार्गदर्शन में भगवान के परम भक्त बने। तो यहां भगवान कहते हैं उसको श्रद्धा मैं देता हूं, और फिर आगे लिखते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईयते। ईयते का मतलब इस दुनिया में, ईय का मतलब इस दुनिया में, इस दुनिया में वो उस श्रद्धा के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। आराधना का मतलब उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लभते च तत कामान, और जब भगवान कहते हैं वो देवता की प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है, उनकी इच्छा पूरी होती है। और कौन करता है इच्छा पूरी? अर्जुन ने पूछा उनकी इच्छा कौन पूरी करता है? भगवान कहता है मैं एव व्यतानितां, मैं ही पूरी करता हूं, इच्छा भी मैं पूरी करता हूं, श्रद्धा भी मैं देता हूं, लेकिन उनको पता नहीं लगता है कि ये मैं करने वाला हूं, वो समझता है कि ये देवता ही सब कुछ करता है। देवता की पूजा करने वाले को श्रद्धा कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्रद्धा देता हूं, और जो देवता उसको फल देता है वो कौन देता है? श्री कृष्ण कहते हैं मैं देता हूं। तो फिर आपकी पूजा करना और देवता की पूजा करने में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जब श्रद्धा भी आप देते हो, फल भी आप देते हो, तो फिर आपकी पूजा और देवता की पूजा में अंतर क्या है? तब भगवान कहते हैं अंतवंतु फलम तेषां
देवता का दिया हुआ फल समाप्त हो जाएगा, अंतवंत उसका अंत हो जाएगा, उसका फल सदा के लिए नहीं रह सकता। क्यों? देवता ही सदा के लिए नहीं रहेगा तो फल कैसे सदा के लिए रहेगा? अंतवंत अंतवंत फलम तेषाम तद्भवती अल्पमेधसाम। अल्प मतलब थोड़ा, मेधसाम मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि कम है, कम बुद्धि वाले लोग, लेस इंटेलिजेंट पीपल, दे गो फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम बेनिफिट, थोड़ी देर के लिए कुछ सुख चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जो आदमी शराब पीता है वो क्या काय के लिए पीता है? पैसा घर का खर्च कर मैं सुखी हो जाऊंगा इसलिए पीता है ना, बड़ा मजा आएगा। क्या शराब में मजा आता है क्या? पागल होता है ना, कम बुद्धि होता है ना, पागल उससे अच्छा है, शराबी से पागल अच्छा है। ये पागल खाना था, एक पागल खाना, पागल खाना यहां है मेंटल हॉस्पिटल, उसके आगे एक शराबी की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में क्या हुआ, व्हील पंचर हो गया, फ्लैट हो गया। शराबी था, व्हील खोल रहा था, पास में गटर था, सारे बुलेट गटर में चले गए जो नाली पानी की जा रही थी। ये पिछित पेके या पिछित रिविया कोई जा रही थी, उसमें गिर गए सारे, बह गए। अब नया टायर लाया, लगान लगा, एक भी बुलेट नहीं, बोलता म्यूनिसिपालिटी खराब है, यहां मेरे बुलेट गाड़ी नाली में चले गए, यहां क्यों नाली बनाई है, नाली पहले से तुमने गाड़ी यहां क्यों खड़ी की है? तब एक पागल ऊपर से देख रहा था, पागल उतर के नीचे आया, बोला तेरे बुलेट तो चले गए, अभी तो तुम्हारे को ऐसे करो, चार चार हर टायर में लगे हुए हैं ना, एक एक निकाल, सबसे निकालो तो तीन बच जाएंगे, तीन इसमें लगाओ, तेरी गाड़ी घर पहुंच जाएगी कल देखो। अरे तू पागल को इतना तुम्हारे को पता लगता है? पागल कहता है मैं पागल हूं, शराबी थोड़ी हूं, सिर्फ पागल हूं मैं, शराबी थोड़ी हूं, शराबी की तो इतनी बुद्धि नहीं बनता। तो इसको बोलते हैं अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम मतलब कम बुद्धि वाले लोग, थोड़े सुख के लिए। कितना सुख? बोले जब तक जिएंगे तब सुख होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ना। जैसे मैं यही, आपने क्या सुख मांगा था? घर गाड़ी, यही मांगा ना मंदिर में जाके, तो हमारे जाने के बाद हमारे किसी काम के हैं क्या? इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे तो फिर किसी काम के हैं क्या? हमारे जाने के बाद इस दुनिया में घर रहे, दुकान रहे, न रहे, क्या फर्क पड़ेगा? ये सच है कि झूठ है? हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो फिर किसी काम क्या है सब कुछ? भगवान कहते अंतवंता तु फलम तेषां तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देव यदो यान्ति। देवान देव यतो यजो यान्ति, जो देवता की पूजा करता है देवता के पास जाता है। मद भक्ताम यान्ति माम अपि, मेरे भक्त वापस मेरे पास आते हैं। अर्जुन पूछता है पूजा देवता की करने गए, श्रद्धा आपने दी, फल भी आपने दिया, फिर वो देवता के पास जाएगा और आपका भक्त आपके पास आएगा, ऐसे कैसे? यहां से एयर मॉरिशस में आप टिकट लो दिल्ली का, एक आदमी इंग्लैंड का ले, पैसा कहां जाएगा? जो आप पैसा दोगे वो पैसा कहां जाएगा? पैसा तो एयर मॉरिशस के पास जाएगा, और आप कहां जाओगे? इंग्लैंड नहीं, जहां पैसा जाएगा आप वहां तो नहीं जाओगे ना, पैसा जाएगा एयर मॉरिशस के पास और आप जाओगे इंग्लैंड, और पैसा पूरा, और फिर पैसा कहां? वो पैसा क्या? आप इंग्लैंड पहुंच गए, तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, लेकिन आप इंग्लैंड जाओगे, आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे। यही भगवान कह रहे हैं, पूजा देवता की करोगे तो देवता के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो हमको कहां जाना है पहले ये तो निर्णय कर ले, हमको कहां जाना है?
मानो एक आदमी ये मॉरिशस का पायलट बन जाए तो फिर उसको टिकट तो लेना नहीं है, जहां चाहे वहां जा सकता है ना। हाँ, उसको बिल्कुल टिकट की जरूरत तो नहीं है ना। तो इस जो उधर जाएगा वो ठीक है या टिकट देके इंग्लैंड जाएगा फिर वापस आएगा फिर दोबारा टिकट देके फिर जाएगा वो ठीक है? दोनों में से क्या ठीक है? तो यहां ये श्लोक खुला पड़ा था भगवद गीता में, ये बुद्धिमानी होनी चाहिए, देवता का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान का अपॉइंटेड इस भौतिक जगत के काम को संभालने के लिए एक अधिकारी, ये समझना चाहिए। हमारे में क्या बुद्धि कम क्यों है? हम देवता और भगवान को समान समझते हैं कि देवता और भगवान एक है, एक नहीं है। देवता भी हमारी तरह जीव आत्मा है, लेकिन उसने भगवान की इतनी सेवा की है कि भगवान ने उसको देवता बनाया है। देवता भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी कामना है, क्या कामना है? जैसे हमारे बहुत भक्त होते हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन किसी की कामना होती है मैं टेंपल प्रेसिडेंट बनूं, किसी की कामना होती है कि मैं टेंपल का ट्रेजरर बनूं, मैं पैसे को देखता रहूं, किसी की इच्छा होती है ना मैं पुजारी बनूं। तो है तो दूसरे भी भक्त है, वो भी भक्त है, लेकिन उनकी इच्छा कोई पद लेने की है और कुछ, तो भगवान देवताओं को ऐसे पद दे देते हैं कि ये मेरी सेवा करो। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो जीव आत्मा है। कोई भी इंद्र बन सकता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को सत्कृतु बोलते हैं, सत मतलब 100, कृतु मतलब यज्ञ, और वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है, उसको दूसरे जन्म में इंद्र होना, इंद्र बनना, इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। जैसे यहां कोई आदमी एमबीए करेगा तो किसी फैक्ट्री का और किसी कंपनी में उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट मिलेगा, तो ऐसे कोई 100 यज्ञ करेगा उसको इंद्र का पोस्ट मिलेगा, उसके लिए वो क्वालिफिकेशन। जैसे किसी डॉक्टर, किसी को मेडिकल अस्पताल में जाना है तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी तो डॉक्टर बनेगा, तो कोई आदमी 100 यज्ञ करेगा तो इंद्र बनेगा। तो देवता और भगवान में अंतर है, पहली बात तो यह समझनी चाहिए। देवता अनेक है, भगवान एक है। देवता जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है, दोनों में अंतर है। अब आइए थोड़ा सा इस श्लोक के साथ आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण 11 साल 4 महीने तक वृंदावन में रहे और लास्ट पार्ट उनका जो था नंदगांव में रह रहे थे। नंदगांव देखा किसने? कोई गया नंदगांव? नंद बाबा का गांव, एक पहाड़ है उसको कहते हैं नंदीश्वर। नंदीश्वर का मतलब नंदी, भगवान शंकर का जो वाहन है उसको नंदी बोलते हैं। नंदीश्वर मतलब जो नंदी का ईश्वर है, मतलब भगवान शंकर उस पर्वत के रूप में वहां विराजमान है। उस पर्वत के ऊपर एक पैलेस है, उसको बोलते हैं नंद बाबा का महल, उसमें मंदिर है और उस अंध मंदिर के अंदर नंद यशोदा और कृष्ण बलराम, ये ठाकुर जी विराजमान है। मंदिर के बाहर निकलते ही आशुतोष भगवान शंकर का मंदिर है उसी प्रांगण में, उसको नंद गांव कहते हैं, नंद बाबा का गांव। और वहां से नीचे एक जगह है जिसको आशुतोष वन कहते हैं, जहां भगवान शंकर बैठ के तपस्या किया था जब छोटे थे। कृष्ण अभी बहुत छोटे ही थे तो भगवान शंकर उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो शंकर जी कैसे वेश में आए थे? शमशान से आए, बबूत लगी हुई थी,
गले में सांप थे, हाथ में डमरू थी, त्रिशूल था और दरवाजे के ऊपर नंद बाबा के बम महादेव को लाए। माँ यशोदा बाहर आई, देखा बाबा रोटी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए। बोला नहीं, आपके लाला का, आपके बेटे का दर्शन करना है। माँ ने बोला मेरा बेटा डर जाएगा, ये सांप है, बड़े बड़े बाल है। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। शंकर जी वहां से उतर के सीधे आशुतोष वन, बाद में नाम हो गया, उस वन में जाके तपस्या करने लगे। और कृष्ण रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, तो गोपियां चुप कराने लगी, एक आई दूसरी आई, नहीं बंद ना कर, रोना बंद नहीं करे। बोस, एक बूढ़ी गोपी आई, पूर्णमासी आई, ये यशोदा कोई घर में आया था क्या, इसको नजर लग गई है। कौन आया था घर में, बच्चे को नजर लग गई है, इविल आई। यशोदा बोलती है उपनंद आया था, सुनंद आया था, ये तो सब ताऊ इसके आए थे, चाचा आए थे। हाँ एक योगी आया था। हाँ योगी कहाँ है, उसको ढूंढो। अब तो सब गोपियों ने गोकुल कहा वो योगी को ढूंढो, योगी को ढूंढो। तो आशुतोष वन में जाके देखते हैं तो शंकर जी ध्यान में बैठा है। बोले बाबा बाबा चलो, यशोदा मैया बुलाए, बाबा चलो नंद भवन में, यशोदा मैया बुलाती है, उसके लाला को, उसके बेटे को नजर लगी है और आग से राय लून कराएगी। नजर लगती तो क्या करते हैं, यहां थोड़ा सा नमक और राई लेके आग में ऐसे करके उसे ऊपर से फेंकते हैं। बोले चलो बाबा। शंकर जी को वहां से लाया गया, दरवाजा खोला, शंकर जी अंदर आए, कृष्ण रोना बंद कर दिया। तो मां बोल दिया हाँ अभी जाओ बाबा, अभी जाओ। शंकर जी दरवाजे की तरफ जाए, कृष्ण फिर रोना शुरू कर दे। अब तो बहुत बड़ा परेशानी होगी, बाबा आए अंदर तो कृष्ण रोना बंद कर दे, बाबा जाए तो कृष्ण रोना शुरू कर दे, क्या करना चाहिए मां। बोला इसका रोना बंद करना है तो इसका चरण लाओ और मैं इसका चरण मेरे सर के ऊपर रखूंगा। शंकर जी ने कहा यशोदा बोल नहीं बाबा, मैं काम है, मेरा बच्चा डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सब गोपियां बोलती हाँ 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 हाँ। अब तो बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ है। माँ यशोदा ने आंखें बंद कर ली, छोटे लाला का चरण लेके शंकर जी के सर को लगाया, बच्चा रोना बंद किया, हंसने लगा, बड़ा कुछ हो गया। तब सब गोपियां कहती हैं रह रहे बाबा नंद भवन में, यहीं रह जाओ, जाओ मत, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दे, जब बच्चा रोए तब दर्शन देना। तुम जाते हो तो रोता है, तुम आते हो तो रोना बंद करते, तो यही रहो, जब रोएगा तो तुम आ जाना दर्शन देने के लिए। तो शंकर जी ने कहा दो शर्त के ऊपर रहूंगा, यहां टू कंडीशन है। बोला पहला कंडीशन ये है कि रोज जब इसको स्नान कराते हो ना तो चरणामृत मेरे ऊपर चढ़ाना, इसका चरणामृत रोज मेरे ऊपर चढ़ाना, और इसको जब खिलाती हो ना भोग लगता है वो प्रसाद मेरे को देना, इसका चरणामृत और प्रसाद दोगे तो मैं यहां रहूंगा। बोला हाँ बाबा ऐसे करेंगे। अभी भी नंदगांव में सुबह भगवान का अभिषेक होता है, पहले पहले चरणामृत शंकर जी के ऊपर चढ़ता है और भोग लगता है तो प्रसाद पहले शंकर जी को अर्पण होता है वहां से आकर। अभी बाबा वहां रुके हुए, तो 11 साल 4 महीने जब पूरे हो गए भगवान श्री कृष्ण के ब्रज लीला के, तो एक दिन नारद ऋषि कंस के पास आया मथुरा। कंस ने कहा ये देव ऋषि क्या समाचार है, सब ठीक है, कुशल मंगल है। बोला सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको जो आठवां देवकी का बेटा मारने वाला था आपको मालूम है कहां है। कंस बोलता क्या, बोला देवकी का आठवां बेटा जो आकाशवाणी हुई थी आपको मालूम है कहां है। मैं बताता हूं, नारद कहता है मैं बताता हूं, वो नंद बाबा के घर जो कृष्ण बलराम है ना, वो वसुदेव के बेटे हैं, आपको कुछ पता नहीं लगा, वो वहां रह रहे हैं, ये तुम्हारे जो राक्षस गए थे ना बच्चों को मारने, पूतना चलना, सबको उन्होंने मारा है, ऐसा काम क्यों नारद कर रहा है? कंस को जाके समाचार दे रहा है। नारद कहते हैं भगवान आए थे असुरों को मारने के लिए और ये मक्खन उधर खाए खाए मक्खन जा रहे हैं, ये कंस कब मरेगा तब सबका सुख होगा, अब इसको जल्दी मारना चाहिए ना। नारद का काम है भगवान का भक्तों के लिए सुख करने के लिए, कंस का बहुत जल्दी मरना जरूरी। अब कंस ने कहा ठीक है क्या करना चाहिए। कंस ने कहा एक तो देवता भैरव की पूजा करेंगे, शंकर का एक रूप है भैरव, काल भैरव कहते हैं, उसको पशु की बलि चढ़ाते हैं। तांत्रिक लोग प्राय भैरव की जाके पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं, बहुत जगहों पे भैरव के मंदिर है। प्रभुपाद ने लिखा है जहां वैद्यनाथ है बिहार में एक ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का, उसके पास काल भैरव का बार कार काल भैरव का मंदिर है, लोग जब पशु की बलि चढ़ाते काल भैरव का बलि चढ़ाएंगे, धनुष यज्ञ करेंगे देवता की पूजा के लिए। मैं यही कहने वाला था कि असुर लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े काल भैरव के पुजारी होते हैं, दुर्गा काल भैरव को बलि चढ़ाना ये प्रायः असुर सारे देवताओं के पुजारी, ये असुरी पूजा है, असुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा काम करते हैं। और कंस ने ये आयोजन किया और फिर बुलाया हरे कृष्णा, फिर बुलाया चाणूर और मुष्टिक